पार्टी के अंदर इशिका जब राघव से मिलने के लिए जा रही थी तो उसे रोकने के लिए आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। आयशा का हाथ इशिका ने झटका तो नक्श और आयशा ने बड़ा सा सीन क्रिएट कर दिया था। वे दोनों सबके सामने इशिका की इंसल्ट कर रहे थे और उसे वहां से जाने के लिए कह रहे थे। कियारा अपनी फैमिली के साथ खड़ी हुई थी। जब उसने वहां कई लोगों को खड़े होते हुए देखा तो वहां जाने की जिद की। उसके जिद करने पर राघव कियारा की व्हीलचेयर को घसीटते हुए उसे उस तरफ लेकर गया। उसने कियारा को भीड़ से थोड़ा दूर रखा। वहां से वो थोड़ा बहुत देख सकती थी, उनकी बातों को भी हल्का फुल्का सुन सकती थी। राघव कियारा के पास खड़ा हुआ था। लोग ग्रुप बनाकर खड़े थे, इस वजह से वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन आसपास की बातों से वो समझ गया था कि वहां क्या चल रहा होगा। राघव ने कियारा से कहा, लगता है मिस सिंघानिया अपनी उस बदतमीज बहन को यहां से भगा रही है, हमें यहीं रुकना चाहिए। उसकी बातों से कियारा समझ गई थी कि राघव किसी औरत की बात कर रहा है। कियारा ने राघव से कहा, भाई वो लड़की बहुत एग्रेसिव है, मुझे मिस सिंघानिया के लिए डर लग रहा है, कहीं वो उन्हें चोट ना पहुंचा दे। मैं यहां पर रुकती हूं, प्लीज आप अंदर जाकर मामले को संभालिए। ठीक है, राघव ने हामी सिर हिलाकर कहा और फिर अपने मॉम डैड से बोला, किया कितनी भी जिद करें लेकिन आप उसे अकेला मत छोड़िएगा, मैं बस आता हूं। कियारा को अपने मॉम डैड के पास छोड़कर राघव भीड़ में नक्श और आयशा के पास चला गया। जैसे ही राघव भीड़ के अंदर घुसने लगा, सब साइड में हो गए और उसे वेलकम करने लगे। राघव को देखते ही नक्श बोला, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर मित्तल, मैं अभी इस लड़की को यहां से बाहर निकलवा दूंगा। बोलते हुए उसने ओजस की तरफ देखकर उससे कहा, सिक्योरिटी को लेकर आओ। थोड़ी देर पहले कियारा ने राघव को मिस सिंघानिया का ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि उसके हिसाब से दूसरी मिस सिंघानिया थोड़ी अग्रेसिव थीं। तभी राघव की नज़र आयशा की कलाई पर पड़ी, जिसको उसने पकड़ रखा था। राघव ने आयशा के हाथ को देखते हुए पूछा, मिस सिंघानिया आप ठीक है ना, लगता है आपको चोट लगी है। राघव ये बस कियारा के लिए कर रहा था, लेकिन जब आयशा ने महसूस किया कि वो उसकी परवाह कर रहा है तो आयशा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, ज्यादा नहीं लगी है, इशिका ने ये जानबूझकर नहीं किया। राघव का चेहरा सर्द हो गया था, उसने गुस्से से इशिका की तरफ देखा। उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये देखकर उसके गुस्से में मुट्ठियां कस गई थीं। राघव इशिका के पास गया और तेज आवाज में बोला, तुम मेरी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदना चाहती थी ना, मैं तुम्हें बेच दूंगा। उसके लिए तुम्हें अपनी गलती के लिए मिस सिंघानिया के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। जब तक ये तुम्हें माफ नहीं करेगी, तुम ऐसे ही उनके पैरों में सर झुकाकर नीचे गिरी हुई रहोगी। राघव को आयशा पसंद नहीं थी, लेकिन वो वहां पर इशिका को ये बोलकर भी सजा नहीं दे सकता था कि उसने उसकी बहन के साथ बदतमीजी की थी। आयशा का सहारा लेकर राघव इशिका को सजा दे रहा था। इशिका राघव की तरफ घूर कर देखने लगी, अब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था। रोहन वहीं पर खड़ा हुआ था, उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोला, मैं नहीं जानता कि आपके बीच क्या दुश्मनी है, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। नक्श को भी वो सब कुछ ज्यादा लगा, इसलिए उसने राघव से कहा, मिस्टर मित्तल आयशा ने इशिका को माफ कर दिया है, इनके बीच जो भी हो लेकिन आखिरकार दोनों बहनें हैं। सबके समझाने के बाद भी राघव पीछे हटने वाला नहीं था। उसने भौं उठाकर कहा, मैं अलग उसूलों वाला आदमी हूं और ना ही मेरा दिल सिंघानिया जितना बड़ा नहीं है। उसके बाद उसने इशिका की तरफ देखा और आगे कहा, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी बात मानती हो या नहीं, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं तुम्हारी छोटी सी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। पूरे देश में तुम्हें कोई रॉ मटेरियल नहीं बेचेगा। सब जानते थे कि राघव मित्तल के लिए ये मामूली सी बात थी। इशिका की कंपनी अभी ठीक से एस्टैब्लिश भी नहीं हुई थी, वो चाहता तो उसे आराम से बर्बाद कर सकता था। वहीं इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार राघव को हो क्या गया है। पहली बार जब वे मिले थे तो उसका बिहेवियर काफी सॉफ्ट था और अब वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा था। इशिका ने गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, ना जाने इसे ये गलत फहमी क्यों है कि मुझे रॉ मटेरियल सिर्फ इसी देश में मिल सकता है। इशिका जवाब में कुछ कहने वाली ही थी कि तभी पीछे से अभिमन्यु की सख्त आवाज आई, और मिस्टर मित्तल को ये क्यों लगता है कि मेरे होते हुए वो ऐसा कर सकते हैं। अभिमन्यु किसी से कॉल पर बात कर रहा था। जब वो वापस आया तो उसने इस भीड़ को जमा देखा। इस वक्त गुस्से से उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। अभिमन्यु भीड़ में आगे जाकर राघव और इशिका के बीच में खड़ा हो गया। राघव ने अभिमन्यु से कहा, मिस्टर राजवंश बेहतर होगा कि आप हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें। उसके समझाने के बाद भी अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा, और अगर मैं फिर भी इंटरफेयर करूं तो? वो काफी चैलेंजिंग वॉइस में बात कर रहा था। राघव ने सब कुछ अपने ईगो पर ले लिया था। उसने कहा, तो फिर मुझे राजवंश एम्पायर और मित्तल एम्पायर के बीच में होने वाली डील के बारे में एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। जैसे ही राघव ने कहा, वहां सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक छोटी सी बहस आज एक बड़ी अरबों की डील कैंसिल करने तक आ गई थी। नक्श ने जल्दी से रिएक्ट करते हुए कहा, चाचू आप इस लड़की के चक्कर में कंपनी को बीच में नहीं ला सकते हैं, ओजस ने नक्श का सपोर्ट करते हुए कहा। मिस्टर नक्श राजवंश सही कह रहे हैं, उन्होंने और उनकी मंगेतर ने मित्तल फैमिली के साथ रिलेशन सही करने में काफी मेहनत की है। आप अगर रिलेशन अच्छा नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इसे और तो मत बिगाड़िए। वहां भीड़ में मौजूद लोग नक्श की बात से सहमत थे। वो धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तेज आवाज में अभिमन्यु के सामने कुछ कह सके। राघव ने गहरी सांस ली और फिर अभिमन्यु को नरमी से समझाते हुए कहा, इस लड़की ने भीड़ में सबके सामने मेरी बहन की इंसल्ट की है। उसे ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि वो अपने जीने की इच्छा तक खो चुकी थी। मुझे कुछ भी करके इसे सबक सिखाना है। क्या अब भी आप बीच में पड़ना चाहेंगे मिस्टर राजवंश? अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में कभी भी हमारे रिलेशन सही नहीं होंगे। राघव कभी अभिमन्यु से लड़ना नहीं चाहता था। जब आयशा ने नक्श को प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने की शर्त रखी थी तब भी उसने अभिमन्यु से ज्यादा बहस नहीं की थी, लेकिन आज वो पीछे नहीं हटने वाला था क्योंकि बात उसकी बहन की थी। राजवंश एम्पायर का बुजुर्ग कर्मचारी अभिमन्यु के पास आकर उसे समझाते हुए बोला, मिस्टर राजवंश, अगर मिस सिंघानिया ने इनकी बहन को चोट पहुंचाई है तो मामला इन्हीं पर छोड़ देते हैं, हमें बीच में कंपनी को नहीं लाना चाहिए। मिस्टर नक्श राजवंश सही कह रहे हैं। पृथ्वी अभिमन्यु के पास आया और दबी आवाज में बोला, आपको ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, सब नक्श का फेवर कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो लोग आपसे पहले ही नाराज हैं उन्हें आपके खिलाफ प्लानिंग करने का मौका मिल जाएगा। प्लीज मामले को और मत बढ़ाइए सर। इशिका अभिमन्यु के पीछे खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा है। उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए इशिका आगे आई और राघव से बोली, मिस्टर मित्तल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कियारा को कैसे चोट पहुंचाई है या मेरी बातों ने उसे कैसे हर्ट किया है। कियारा यहीं पर है, आप उससे पूछ सकते हैं। मामला सामने आएगा तो आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग जल्द ही दूर होगी। इससे पहले कि कियारा को वहां बुलाया जाता, आयशा जल्दी से बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो इशिका? तुम्हें पता है कियारा की अभी सर्जरी हुई है, वो इस माहौल में आएगी तो और परेशान हो जाएगी। प्लीज तुम उसे यहाँ बुलाने के लिए मत कहो।
अभिमन्यु ने आयशा की तरफ सर्द निगाहों से देखा और सख्ती से बोला, मुझे लगता है कि आपको मिस मित्तल को यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि इस मुद्दे को सही तरीके से निपटाया जा सके। वो कम्फर्टेबल नहीं है, राघव ने गुस्से में जवाब दिया। राघव जानता था कि कियारा उस औरत का सामना नहीं करना चाहती जिसने उसे भला बुरा कहा है, इसीलिए उसने मना किया था। लेकिन तभी गौतम मित्तल ने सुझाव देते हुए कहा, राघव, तुम्हें कियारा को बुला लेना चाहिए ताकि बात सबके समझ में आ जाए। इन सबको यही लगता है कि हम उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। राघव कोई जवाब देता उससे पहले गौतम व्हीलचेयर के साथ कियारा को वहां ले आया था। कियारा की नज़रें झुकी हुई थीं क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद इतने लोगों के सामने आई थी। कियारा को परेशान देखकर राघव को अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, मिस्टर राजवंश, कियारा के पूरी सिचुएशन क्लियर करने के बाद उम्मीद है कि आप बेवजह की जिद नहीं करेंगे और जो लोग यहां जबरदस्ती घुस आए हैं उन्हें खुद अपने हाथों से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। हाँ, वो भी कर लूंगा, अभिमन्यु ने कॉन्फिडेंटली कहा क्योंकि वो सच जानता था। राघव कियारा के पास नीचे झुका और इशिका की तरफ इशारा करते हुए बोला, किया, डरो मत, उसकी तरफ देखो और बताओ सबको कि उस औरत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है। इन सब में अगर कोई सबसे ज्यादा डर रहा था तो वो आयशा थी। कियारा को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। आयशा परेशानी में अपने हाथ खुरचने लगी। वो मन ही मन बोली, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उसका मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से भाग जाए। वहीं कियारा राघव के पूछने पर अभी भी नजरें झुकाए बैठी थी। उसके सास और पति ने जो भी किया था उसके बाद वो काफी टूट गई थी और उस दिन आयशा ने उसे जो भी कहा उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो नज़र उठाकर उसकी तरफ देखें। फिर भी राघव के कहने पर कियारा ने नज़रें उठाईं। उन सबको लगा कि कियारा गुस्से में उसे देखेगी, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और साथ ही वो हैरानी से इशिका की तरफ देख रही थी। इशिका कियारा के थोड़ा पास आई और उससे पूछा, कियारा, मैंने तुम्हें हर्ट किया है या शायद कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करने लगी हो? मुझे बता दो कि मैंने आखिर किया क्या है जिसका गुस्सा मुझ पर उतारा जा रहा है। बोलते हुए इशिका की आवाज़ से उसका गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। वहीं इशिका की बात सुनकर कियारा चौंक गई। उसने जल्दी से हाथ हिलाए और घबराते हुए बोलने की कोशिश करने लगी, नहीं, मैं। कियारा के इस तरह घबराने को राघव ने एक अलग ही तरीके से लिया। वो कियारा का कंधा सहलाकर बोला, मैंने कहा ना किया, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो कहना है खुलकर कहो। जैसे ही राघव की बात खत्म हुई गौतम मित्तल गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोले, राघव, क्या तुमने गलत मिस सिंघानिया की तरफ इशारा किया है? ये वही वाली मिस सिंघानिया है जिसने उस दिन हमारी किया की जान बचाई थी। कियारा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। राघव चौंकते हुए बोला, क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने इशिका की तरफ देखा, जो गुस्से में उसे बुरी तरह घूर रही थी। फिर राघव की नज़र आयशा पर पड़ी, जिसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे और वो कांप रही थी। राघव को धीरे धीरे सब समझ आ गया था। उसने आयशा की तरफ इशारा करके कियारा से पूछा, किया, और वो लड़की कौन है? कियारा ने आयशा की तरफ देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, भाई प्लीज मुझे यहां से लेकर चलिए, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, प्लीज उसे यहां से बाहर भेज दीजिए। कियारा का बर्ताव साफ बता रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। फिर भी राघव ने कन्फर्म करने के लिए उससे पूछा, तो इशिका वो इंसान है जिसने तुम्हें बचाया था और आयशा वो जिसने तुम्हें इतना भला बुरा कहा कि तुम डिप्रेशन में जाने लगी थी? उस दिन को याद करके कियारा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए हां में सिर हिलाया।